शिला काशीश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शिला भूगर्भ गोस्वामी तिथि तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंद। तो ये जो हमने भजन गाया है इसका हम अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अहो जो आप प्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों का पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महानर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ? गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊँगा? गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातम् सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री मदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और शुरू करने से पहले मैं सभी भक्तों की आशीर्वाद की याचना करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने सुना है जो पढ़ा है उसी को दोहरा सकूँ। स्पेशली वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद की याचना करते हुए मैं कुछ, आज दो महान आचार्य हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ उनसे शिक्षाएँ लेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा भूगर्भ गोस्वामी जी के बारे में। तो इनके बारे में वैसे शास्त्रों में बहुत कम बताया गया है, जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी के ये बहुत ही इंटीमेट और बहुत ही घुयतम प्रिय मित्र हैं। लोकनाथ गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका किसी प्रकार से सम्मान हो या उनकी ख्याति फैले, तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों में उनके बारे में भी नहीं है और इनके बारे में भी बहुत कम लिखा हुआ है। तो स्पेशली जो बताया गया है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इनको भेजा गया था वृंदावन कि आप वहाँ पे जाइए, भजन कीजिए और अनेक लीला स्थलियों को जो भगवान के पास टाइम्स हुए हैं उनको ढूंढिए और उनके बारे में पता करिए। और भूगर्भ गोस्वामी हैं वो गदाधर पंडित जी के शिष्य हैं वैसे। और बता कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में बारहवें अध्याय के आदि लीला के बारहवें अध्याय के 82 श्लोक में भूगर्भ गोसाइयार भागवत दास ई दुई आसी कोइला वृंदावन वास। वो कह रहे हैं कि गदाधर गोस्वामी की ये 11वीं शाखा है भूगर्भ गोस्वामी, और 12वीं जो शाखा है वो है भागवत दास। और दोनों ही वृंदावन गए चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, और वहां पर उन्होंने अपना समय बिताया और भजन किया। और जैसे भूगर्भ गोस्वामी जी का जो नाम है वो उसी नाम पे पड़ा है, क्योंकि भू का मतलब है भूमि और गर्भ का मतलब है गुफा, तो ये भजन करते थे भूमि के नीचे, जिससे कि कोई भी उनको भौतिक डिस्ट्रैक्शन, मटेरियल डिस्ट्रैक्शन कोई भी प्रकार की जो वो ना हो, उससे बचने के लिए ये ऐसा भूगर्भ गोस्वामी करते थे। और भूगर्भ गोस्वामी जी अपने भजन में इतने प्रगाढ़ थे, इतने पारंगत थे कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी जो भौतिक वातावरण था उससे उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था, और इसीलिए वो अपना भजन भी भूमि के नीचे करा करते थे। मैं सोच रहा था जब ये पढ़ रहा था कि वैसे ही हमारा मन इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है, क्योंकि हम कंडीशन सोल हैं, कंडीशन अवस्था में हैं, मन को कंपेयर किया जाता है एक पागल बंदर के समान। बंदर अपने आप में बहुत चंचल है, और पागल बंदर तो उसकी क्या हालत है, उसी प्रकार से मन को कंपेयर किया जाता है। और आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं हमारे इस कलयुग में, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अनेक अनेक प्रकार से लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सोचिए दोनों डिस्ट्रैक्शन मिल जाते हैं तो एक व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल है भजन करना। और हमारे आचार्य हमारे को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सिखा रहे हैं कि कैसे वो इस भौतिक वातावरण से बचने के लिए वह शांत या फिर भक्तों के संग में अपने भजन को संयम एग्जीक्यूट करते थे। और बताया गया भूगर्भ गोस्वामी जो हैं गौर गणदेश दीपिका के अनुसार भूगर्भ गोस्वामी हैं, वो गोपी हैं प्रेम मंजरी ब्रजलीला में। भूगर्भ गोस्वामी पाद की चाह। हम लोकनाथ गोस्वामी जी, वो काशीश्वर पंडित जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो काशीश्वर पंडित हैं वो महाप्रभु के बहुत ही इंटीमेट एसोसिएट हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के इंटीमेट एसोसिएट हैं, और ये हैं शिष्य हैं किनके, ईश्वरपुरी के, ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। कौन कौन थे, मेनली गोविंद और काशीश्वर। और जैसे जब महाप्रभु का अंतर्धान हुआ तो महाप्रभु ने इन दोनों को क्या बोला था कि आप दोनों जाइए, सॉरी ईश्वरपुरी ने, क्षमा कीजिए, ईश्वरपुरी ने इन दोनों को बोला था कि आप दोनों चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट कीजिएगा सेवा में। तो गोविंद उनके पर्सनल सर्वेंट रहे और काशीश्वर भी उनको कैसे सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु की, उनके बॉडीगार्ड बनते थे। जब महाप्रभु गंभीरा से जगन्नाथपुरी दर्शन करने आते थे और अनेक कई स्थानों पर जाते थे तो ये बॉडीगार्ड के समान महाप्रभु को प्रोटेक्शन देते थे, और महाप्रभु के लिए भोजन भी बनाया करते थे और भक्तों को प्रसाद भी खिलाया करते थे काशीश्वर पंडित। और स्पेसिफिकली जब महाप्रभु नृत्य करते थे तो अनेक प्रकार के सर्कल्स बनते थे महाप्रभु को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो जो बीच वाला सर्कल था उसको काशीश्वर पंडित, तीन सर्कल बनते थे, उसमें जो सेकेंड सर्कल होता था उसको काशीश्वर पंडित लीड करते थे, और महाप्रभु की कोई भी एक्सटेसी, महाप्रभु का जो नृत्य है उसमें कोई भी विघ्न ना आए, कोई भी बाधा ना आए, उसको प्रदान करने के लिए काशीश्वर पंडित इस प्रकार से कार्य करते थे। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से, ईश्वरपुरी शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्वर श्री गोविंद नाम तारा प्रिय अनुचर। ब्रह्मचारी काशीश्वर जो थे वो ईश्वरपुरी के शिष्य थे और गोविंद भी उनके एक और शिष्य थे। तार सिद्धि काले दोहे तार आज्ञा पाया नीला चले प्रभु स्थाने मिलीला आसिया। तो काशीश्वर 18वें और गोविंद 19वें प्रोमिनेंट डिवोटीज जो कि जगन्नाथपुरी में थे उनका उनमें नाम आता है, और दोनों ही चैतन्य महाप्रभु को सेवा करते थे क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये आदेश दिया था। गुरु र संबंधे मान्य कैला दुहा करे, तारा आज्ञा मानी सेवा दिले न दोहारे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी क्योंकि वह उनके ही गॉड ब्रदर है। चैतन्य महाप्रभु भी ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, काशीश्वर भी, गोविंद भी, तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं होती थी कि उनसे कोई सेवा ले। और लेकिन क्योंकि अपने गुरु की तार आज्ञा मानी सेवा दिले न दोहारे, क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा को मानते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनसे सेवा को स्वीकार किया। तो ये काशीश्वर पंडित जी के बारे में बताते हैं। और गौड़ निर्देश दीपिका के बारे के अनुसार बताया गया है कि काशीश्वर और गोविंद भृंगार और भंगुर सर्वेंट थे वृंदावन लीला में। तो ये है काशीश्वर का हम चरित्र देखते हैं जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है, गोविंद जी का भी, कि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे और क्योंकि उनके गुरु ने ये आज्ञा दिया था। तो आज हम थोड़ा सा इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे काशीश्वर पंडित अपने गॉड ब्रदर्स की सेवा करते हैं और अपने गुरु के शिष्य के गुरु के आदेशानुसार। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जब इस अर्थली इस भौतिक अपनी लीलाओं को ख़त्म कर रहे थे तो उनके शिष्य उनसे इतने आसक्त थे, इतना प्रेम करते थे, और उनके शिष्य नहीं चाहते थे कि वह बिल्कुल भी इस अपनी लीला को और कंटिन्यू करें क्योंकि उनके शिष्य को उनसे बहुत आसक्ति थी और उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनकी इंस्ट्रक्शंस को वो अपने हृदय में हमेशा धारण करते थे। बहुत विशेष विशेष शिष्य हुए रामानुजाचार्य के। तो रामानुजाचार्य उनकी इस स्पेशल रिक्वेस्ट को सुन के रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, मैं कुछ और दिन अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने कुछ और दिन और रहने लगे हुए। और उन्होंने कहा कि अब मेरे सारे शिष्य को बुला लीजिए, है ना, जहाँ पे भी पूरे भारत में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे शिष्य हैं उन सबको बुला लीजिए, मैं कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। और उन्होंने अनेक प्रकार के उपदेश दिए, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया उन्होंने। सबसे उसमें बताते हैं वे कि जैसे आप अपने गुरु की सेवा करते हो वैसे ही गुरु के जो शिष्य हैं उनकी भी सेवा करो। गुरु की सेवा करना तो आसान है लेकिन गुरु के शिष्यों की भी सेवा उसी प्रकार से रामानुजाचार्य चाहते थे। तो जैसे ही अभी गुरु महाराज जी आते हैं तो एक बारी इस गिरीश कमलोचन वो बता रहे थे, हम जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे, कह रहे थे किसी भी मंदिर में एक स्पिरिचुअल मास्टर या कोई जीबीसी या गुरु आएंगे तो सब उनकी सेवा करेंगे लेकिन जो उनके सर्वेंट्स हैं उनका कोई ख्याल नहीं रखता है। जनरली ऐसा एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है, लेकिन रामानुजाचार्य की स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी अपने सारे शिष्यों को कि मेरे जाने के बाद जो गुरु के शिष्य हैं उनकी भी सेवा करिए। क्योंकि और इसी प्रकार से एक बारी क्या हुआ, रामानुजाचार्य खुद अपने इस इंस्ट्रक्शन को अपने व्यवहार से दिखाते हैं। एक बार रामानुजाचार्य अपने अनेक प्रकार के शिष्यों के साथ एक गांव में चले गए थे और गांव में गए, वहां पे दो प्रकार के शिष्य थे उनके, एक थे अमीर शिष्य और एक थे गरीब। तो रामानुजाचार्य ने कहा क्या बोलते हैं अपने शिष्य को, आज हम बहुत सारे लोग हैं, लगभग 50 से ऊपर लोग थे, तो हम ना इस अमीर शिष्य के घर पे आज भोजन स्वीकार करेंगे और यहीं पर ही रेस्ट लेंगे। तो उन्होंने अपने एक दो शिष्य को भेज दिया, कहा कि आप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर दीजिए, वहाँ पे जाके बता दीजिए कि हम लोग आएंगे। तो वो चले गए और जैसे ही वो जो जो रामानुजाचार्य के दो शिष्य थे उस अमीर जो व्यक्ति था उनके घर पर गए, तो जैसे उनको पता लगा कि रामानुजाचार्य आ रहे हैं तो इतने खुश हो गए और इतने हर्षोल्लास हो गए, वो तैयारी करने लगे वहीं पर ही कि रामानुजाचार्य आ रहे हैं। और घर पे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने लगे, घर को साफ करने लगे और अनेक प्रकार की व्यवस्था करने लगे और इतने व्यस्त हो गए इस व्यवस्था में, जो दो शिष्य आए थे ये ऑर्डर देने के लिए कि रामानुजाचार्य आ रहे हैं, उनको उनका आदर सत्कार करना ही भूल गए, उनको कैसे रिसीव करना चाहिए वो भूल गए। और गृहस्थों का तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो कि अतिथि सेवा, उनको वहीं बाहर खड़ा कर दिया, बाहर ही खड़े रह गए वो। और फिर जैसे ही ऐसे वो वेट करते रहे वो दोनों शिष्य कि अब ये हमको कुछ कहेंगे क्या हो गया, हमने तो खाली अभी ये बताया कि रामानुजाचार्य आ रहे हैं। तो ऐसा करके वो बता के चले गए रामानुजाचार्य के पास कि हमने बता दिया कि वो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने खुश हो गए वो और उन्होंने हमारे को घर पे भी नहीं बुलाया तो हम लोग ये आ गए। तो रामानुजाचार्य ने जैसे ही ये सुना रामानुजाचार्य का, हम यहाँ पे प्रसाद नहीं लेंगे, अब हम जाएंगे उस गरीब शिष्य के घर पे, क्योंकि उन्होंने आपका आदर सत्कार नहीं किया। तो ऐसे वो गरीब शिष्य घर पे चले गए और फिर वहाँ पर जब गए तो जो उनके वो जो ब्राह्मण थे वो उनका क्या कार्य होता था, वो रोज मधुकरी करते थे, कुछ भोजन सामग्री कलेक्ट करते थे और फिर वो भोजन बनाती थी उनकी जो पत्नी थी। तो इस प्रकार से उनकी दिनचर्या चल रही थी। और जो उनका जो उनके पास एक ही छोटा सा एक कपड़ा होता था अपने घर में, और जो उनकी पत्नी जिससे अपने शरीर को ढकती थी सही प्रकार से, और जब वो ये मधुकरी करने जाते थे तो वही कपड़े के द्वारा वो मधुकरी करने जाते थे। तो ये ऐसे ही एक बार वो चले गए मधुकरी करने के लिए और उनकी पत्नी घर में अकेली थी और वहाँ पे सारे शिष्य रामानुजाचार्य के साथ आ गए। और अब जो उनकी पत्नी थी उन्होंने सही प्रकार से अपने शरीर को भी नहीं ढक रखा था। जब रामानुजाचार्य को ये पता लगा तो रामानुजाचार्य ने खुद अपना वस्त्र उस उनकी जो डिसाई जो उनके जो उनकी पत्नी थी ब्राह्मण की उनको दिया और फिर कहा कि आज हम यहाँ पे भोजन करना चाहते हैं सारे शिष्य और विश्राम भी करेंगे। तो जैसे ही उनकी पत्नी को ही पता चला उन्होंने कहा अभी तो वो पतिदेव आए भी नहीं है, वो तो गए हैं अपना मधुकरी करने के लिए और कितने समय बाद आएंगे और इतने सारे शिष्य हैं उन सबको सर्व करना है, खाली रामानुजाचार्य को तो करना नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करा जाए। तो उनकी जो जो पत्नी थी वो क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पर उनको एक पता था कि एक पास में एक अमीर व्यक्ति रहता है जो कि बहुत कामुक है और उनकी पत्नी को काफ़ी बार कह चुका है कि आप मेरी कामुक इच्छाओं को पूर्ण करोगे तो मैं आपकी सारी इच्छाएं जो आप चाहते हैं वो दे दूंगा। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि आज मैं ये मेरी ऐसी सती रहने का मेरा क्या फ़ायदा अगर मैं अपने गुरु के गुरु और उनके शिष्यों की सेवा नहीं कर सकती। तो उनकी पत्नी ने कहा कि उस अमीर व्यक्ति के पास चली गई और कहा कि मैं आज आपकी सारी कामुक इच्छाओं को पूर्ण करूंगी, आप मेरे को कुछ सामग्री और कुछ सामान दे दीजिए क्योंकि मेरे गुरुदेव और उनके शिष्य आए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो कामुक व्यक्ति बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है आपको जो चाहिए ले लीजिए, सब कुछ दे दिया और उनकी उनकी पत्नी ने भोजन बना दिया और सारे शिष्य खुश हो गए। और फिर उनके पति आते हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा आज तो कुछ मिला नहीं, और उन्होंने जब ये देखा कि रामानुजाचार्य उनके सारे शिष्य आए हुए तो और ज़्यादा परेशान हो गए। तो उनकी पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है, आज मैंने सब कुछ व्यवस्था कर दिया और सबको भोजन खिला दिया है। तो उन्होंने कहा कैसे, उनकी पत्नी ने कहा जैसे आप जानते हैं कि एक हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं बहुत कामुक हैं और अनेक प्रकार से मेरे को कई बार कह चुके हैं कि मैं कामुक इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता हूँ, तो मैंने आज उनको कहा कि आप बोलते हैं कि आप मेरी कामुक इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, मैं अपने गुरु की सेवा करना चाहती हूँ। तो उनके पति को एकदम अजीब सा लगा कि कितना इनका गुरु भक्ति है। फिर उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं, अब सारे शिष्य खा चुके थे, श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री कृष्ण राम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो उनके ब्राह्मण ने कहा कि चलिए मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, रात का समय था, चलिए। और जब वो गई वहाँ पर उस अमीर उस कामुक व्यक्ति के पास और कहा कि आप मेरी सारी इच्छाएं अपनी पूर्ण कर सकते हैं, ये शरीर आपके लिए है। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बारिश में थे और आप ये अकेले आए हैं। उन्होंने कहा हाँ नहीं, मैं अपने पति के साथ आई हूँ और मेरे अपने सारे गुरु और जो उनके शिष्य थे आपने जो सामग्री दी थी उनको खिला दिया है। तो जब उसने ये बात सुनी उस ब्राह्मण की पत्नी से, उस कामुक व्यक्ति ने, तो उसका हृदय आप्लावित हो गया। उसने कहा कि ये पति पत्नी इतना इनकी गुरु भक्ति है और इनका इतना अपने उनके गुरु और उनके शिष्यों की सेवा के लिए इतना प्रगाढ़ प्रेम है। तो उसने कहा, उसका हृदय आप्लावित हो गया और उसने कहा मेरा ये जीवन बेकार है कि मेरी कामुक इच्छाओं की वजह से मैं आपके प्रति अपराध कर रहा हूँ। और इस तरह से उनका हृदय अप्लावित हुआ। फिर उसने ब्राह्मण से भी मिले वो, और फिर अगले दिन वे उनके घर पे आते हैं वो कामुक व्यक्ति और रामानुजाचार्य। हाँ क्षमा कीजिए, फिर ना वहाँ पर वो जो पति ब्राह्मण होते हैं उनकी पत्नी होते हैं वो उनके लिए रामानुजाचार्य का बड़ा स्पेशल प्रसाद भी लेके जाते हैं, जो महाप्रसाद पाया होता है वो लेके जाते हैं और उनको ऑफर करते हैं, और वो कामुक व्यक्ति खाता है और उसका जो हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। फिर अगले दिन वो उनके घर पर आता है और रामानुजाचार्य से बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। रामानुजाचार्य के वो भी शिष्य बनते हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य अपने एग्जाम्पल से सिखाया उन्होंने कि कैसे हम वैष्णवों की सेवा के लिए हमारे को तत्पर रहना चाहिए। देखिए भक्ति में यही मापदंड है हमारा कि जैसे बताया जाता है तीन तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। उसमें यही है, कनिष्ठ भक्त का हम सुनते हैं कि वह वैष्णवों को सही प्रकार से सम्मान नहीं कर पाता है, वैष्णव का आदर नहीं कर पाता है। हालांकि भगवान का सम्मान करना, भगवान को आदर देना आसान है, वो भी अपने आप में बहुत पूजनीय है जो भगवान के मंदिर में आते हैं। जैसे हम देखते हैं शुरू में कोई व्यक्ति आता है तो भगवान के प्रति तो बड़ी आसक्ति होती है, लेकिन जो मंदिर में लोग रह रहे हैं वो उनके बारे में कुछ नहीं पता, चाहे वो कौन है, क्या है उनकी भक्ति। तो इसी प्रकार से क्योंकि होता है लाइन, कभी कोई मंदिरों में देखते हैं बाहर के मंदिरों में लाइन लगी होती है तो लोग लड़ाई करते हैं कि मेरे को पहले दर्शन करने हैं, मेरे को पहले दर्शन कर दें, कि जो भगवान के भक्त हैं उनसे कभी बात उनका द्वेष होता है या लड़ाई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, मध्यम स्तर पर आता है, तो वह अब सही भक्तों को जान पाता है किस प्रकार से, और उत्तम भक्त तो सभी को आदर देता है, वो तो हर एक जीव को भी आदर देता है। तो यही भक्ति में है कि हम कैसे वैष्णवों को हम सही प्रकार से आदर सम्मान करें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जो वैष्णवों का जो आशीर्वाद है वो हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक ईंधन की तरह काम करता है हमारे भक्ति के जीवन में। जो वैष्णव भक्ति वैष्णव को अगर हम सही प्रकार से सम्मान देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही भक्ति में आसान हो जाता है हमारे लिए भक्ति करना। लेकिन जब हम सोचते हैं कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान को सम्मान करना, जैसे हम बता रहे थे, गुरु को करना भी आसान है। पहले तो भगवान को करना ही अपने आप में ग्लोरियस है, फिर कुछ लोग भगवान को कर पाते हैं लेकिन गुरु को सम्मान नहीं कर पाते हैं, खाली मैं और भगवान। जो भी कोई बीच में आ रहा है गुरु को किस प्रकार से समझते हैं, गुरु एक अड़चन है मेरे और भगवान के बीच में। इसी प्रकार से वो कई बार मूवीज भी आती हैं, एक मूवी आई थी ओ माई गॉड, उसमें कहा क्या बोलते हैं कि कोई भी गुरु को स्वीकार मत करो, सब ढोंगी हैं, केवल मैं और इस प्रकार से कि भगवान को हम मान सकते हैं और जो गुरु हैं वो कोई उनका रोल नहीं है, लेकिन जो गुरु हैं वो हमारे को भगवान की भक्ति करने में और सहायता करते हैं। तो ये है कि कुछ लोग गुरु को भी सम्मान कर पाते हैं, लेकिन उससे ऊंचा स्तर क्या है, भगवान को भी सम्मान करना, गुरु को भी सम्मान करना और वैष्णवों को भी सम्मान करना। तो मैं सोच रहा था कि जैसे ही कोई व्यक्ति वैष्णवों को, हम जैसे ही बात होती है कि वैष्णवों को सम्मान करना चाहिए, तो हमारे साथ ये डाउट आता है कि हम किनको सम्मान करें, किनको आदर दें, सीनियर को दें, जूनियर को दें, किसी बूढ़े व्यक्ति को दें, या फिर जो नया भक्त आया है मंदिर में उसको दें, या फिर जो बहुत ही अच्छे से लेक्चर देता है उसको सम्मान दें, शुद्ध भक्तों को सम्मान दें, कौन शुद्ध है ना। सबसे पहले तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इट रिक्वायर्स वन टू नो वन, अगर हम ही शुद्ध नहीं है तो हम किस शुद्ध भक्त को जान पाएंगे। हम सोचते हैं कि हम शुद्ध भक्तों को खाली सेवा करेंगे, अब शुद्ध भक्त ढूंढते रहते हैं कभी मिलते नहीं है, और इस प्रकार से व्यक्ति कन्फ्यूज ही हो जाता है कभी कभार। तो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं बहुत सुंदर एक वाक्य लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं तो वह बता रहे हैं हाँ बहुत सुंदर ही बोलते हैं, छोटा बड़ा भक्तगण बंदोन सवार श्री चरण सबे मोर कर संतोष, स्वरूप गोसाई रमत रूप रघुनाथ जानयत ताई लिखी नाही मोर दोष। ओके, छोटा बड़ा भक्तगण, जो छोटा है या बड़ा भक्त है, सारे भक्तों की चरण को मैं अपने सर पर धारण करता हूँ और उन्हीं का संतोष मेरी भक्ति के लिए वर्धन कार्य करेगा, कि मैं चाहता हूँ वो मेरे से संतुष्ट रहे, और मैं जो भी लिख रहा हूँ वो स्वरूप गोसाई और रूप रघुनाथ की आज्ञा के अनुसार लिख रहा हूँ, इसीलिए मेरा कोई दोष नहीं है। क्या बता रहे हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर इसी कमेंट्री में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, क्योंकि तीन तरह के भक्त होते हैं, एक होते हैं कृष्ण नाम कोरी भजन विज्ञ भजनशीला और कृष्ण नामे दीक्षिता, और कृष्ण नाम कही कि इनिशिएटेड डिवोटीज और जो भजन में सही प्रकार से लगे हुए हैं और जो कि एक्सपर्ट हैं भक्ति में। तो कह रहे हैं सभी प्रकार के भक्तों के मैं आशीर्वाद की याचना करता हूं, और वो एक बता रहे हैं कि हो सकता है जो स्मार्टा लोग हैं जो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे हैं वो छोटा कमी निकाले चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में, क्योंकि ये मैंने एक व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं अपने हिसाब से नहीं लिख रहा हूं, ये मेरे गुरु की आज्ञा है उसी के हिसाब से मैंने ये ग्रंथ को लिखा हुआ है। और कह रहे हैं कि तीन तरह के भक्त हैं, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुछ नाम जप कर किन्हीं का इनिशिएशन हो गया है सबसे पहले, और दूसरे तरह के भक्त हैं जो कि भजन में सही प्रकार से नियुक्त हैं, और तीसरे हैं जो उत्तम भक्त हैं। तो डिफरेंस है दोनों में, उससे किसी की दीक्षा हो जाए लेकिन फिर भी वह हो सकता है भजन में सही प्रकार से ना लगा हुआ हो। तो ये तीनों का डिफरेंस बता रहे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ, और सब इनका संतोष ही मेरा, इनके संतोष से ही मैं ये कार्य संपन्न कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं। और एक बारी एक भक्त बता रहे थे, एक हमारे ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने एक बारी इजुलिस गोपाल गोस्वामी महाराज जी के पास गए, कहा कि ये हमारा मंदिर में बहुत सारे हरियाणा के लोग हैं, कैसे मैनेजमेंट करें हम लोग, बहुत मुश्किल है डील करना, है ना, इतने सारे अनेक प्रकार के भक्त हैं। तो महाराज ने कहा उनको, परम पूजने गोपाल की महाराज, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप समझ लो कि आप सबके सेवक हो, तो आपके लिए ये मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसे अवस्था में है, बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो ये हमारे को जैसे हम बता रहे थे, शिला भक्ति ठाकुर जी बताते हैं कि ये जो वैष्णव का जो आशीर्वाद है वो हमारी भक्ति में बहुत वर्धन की तरह कार्य करता है, ईंधन के समान है, ये फ्यूल की तरह कार्य करता है हमारी भक्ति में। अदरवाइज अगर हम देखते हैं अपने जीवन में ही, अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं या किसी वैष्णव से अच्छे से प्रकार से डील नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो हमारे लिए माला करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक माला पूरा एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने भारी बोझ हमारे को पकड़ा दिया है। और अगर हमारा वैष्णव के साथ सही व्यवहार है, सही उनका आचरण है, तो हमारे लिए जो हरिनाम को स्वीकार करना भी बहुत आसानी हो जाती है। तो इसीलिए बताया गया है कि हरिनाम का जो सहायक है वो बहुत अच्छा है कि साधुओं का सही प्रकार से सम्मान और उनका आदर, उनकी सेवा, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए, क्योंकि जो वैष्णव सेवा है वो हमारे को एक्चुअल में असलियत में वो हमारे लिए ह्यूमिलिटी डेवलप करता है, हमारे को जो भक्ति में विनम्रता है, विनम्रता के बिना कोई वैष्णव सेवा कर भी नहीं सकता, और वैष्णव सेवा के द्वारा ही विनम्रता आती है, और विनम्रता के द्वारा ही कोई व्यक्ति सही प्रकार से भगवान के नाम जप सही प्रकार से कर सकता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या बोला, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्ण अमान न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कि अगर हमारे को सही प्रकार से अपने नाम जप करना है पूरे, तो हमारे को ये विनम्रता को और सहिष्णुता को अपने जीवन में अनुकूल करना चाहिए। और अगर हम कभी कभी कोई व्यक्ति सोच सकता है कि कि क्या बोलते हैं, मैं तो कि मैं कृष्ण को और गुरु को सम्मान दे रहा हूँ लेकिन वैष्णव को नहीं देता है कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक्चुअल में अगर कोई वैष्णव को सम्मान नहीं देगा या उनका आदर नहीं करेगा, तो थोड़े समय बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा गुरु या कृष्ण में भी। हम देखते हैं वो कथा जो कि रामचंद्रपुरी के बारे में हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि रामचंद्रपुरी सबसे पहले वो किसके प्रति अपराध किए, रामचंद्रपुरी सबसे पहले अपराध किए जगदानंद पंडित के प्रति, क्योंकि जगदानंद वो जाते थे जगन्नाथपुरी में और क्या करते थे, सन्यासी के रूप में भक्तों सबको बुलाते थे और जगदानंद पंडित को खूब खिलाते थे महाप्रसाद, और फिर महाप्रसाद पहले खूब खिलाते थे फिर क्या बोलते थे कि देखिए जो सन्यासी को इतना पाना नहीं चाहिए। और मैं तो देखता था, मैंने तो सुना है कि जो महाप्रभु के जो भक्त हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा वैराग्य का पालन करते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जगदानंद पंडित तो खूब खा रहे हैं महाप्रसाद। तो इस प्रकार से फॉल्ट निकालते थे, और फिर उन्होंने फॉल्ट निकाला किसके प्रति, अपने गुरु के प्रति, माधवेंद्रपुरी के प्रति, है ना, माधवेंद्रपुरी जब शरीर छोड़ रहे थे, और इस कारण से क्योंकि वैष्णव और गुरु के प्रति वो फॉल्ट निकाल रहे थे, तो उससे क्या हुआ, वो किस में रिफ्लेक्ट हुआ अल्टीमेटली, चैतन्य महाप्रभु को। जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए हो और वहाँ पे उनके जो आंगन में अनेक प्रकार की चींटियाँ थी, तो क्या बोलते थे किसकी प्रकार से, तो क्या कहते थे कि पिछले दिन किसी ने बहुत मिठाई खाई होगी इसीलिए यहाँ भी बहुत सारी चींटियाँ हैं, तो सन्यासी को तो इतना मीठा खाना नहीं चाहिए, इस प्रकार से आरोप लगाते थे। तो देखते हैं कि ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता है, कि वैसे शुरुआत ऐसी होती है व्यक्ति की कि अगर गुरु वैष्णव का सम्मान नहीं करता तो वह भगवान को भी थोड़े समय बाद सम्मान नहीं कर पाएगा, है ना, वो खाली मटेरियल प्लेटफॉर्म पर रहेगा कि अपने लिए ही, वो भगवान को भी किस प्रकार सम्मान करेगा कि थोड़े समय के लिए कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, सही प्रकार से कृष्ण के और भगवान के अस्तित्व को भी नहीं जान पाएगा। और तो इसमें ऐसे ही हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी। रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो क्योंकि वो जब वह महाप्रभु से मिलना चाहते थे तो वह कहाँ पे जाते हैं, नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं शांतिपुर में, और वहाँ पर नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि आप चोर हो, और इस प्रकार से कहते हैं क्योंकि आपने सभी अभी आशीर्वाद दो सभी वैष्णवों का, तभी आप सही प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार कर पाओगे। और चैतन्य नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं कि आप सभी वैष्णवों के लिए आयोजित करो एक फीस्ट आयोजित करो जिससे कि सभी वैष्णव आपसे प्रसन्न हो, तब आप उनको प्रसन्न करके ही चैतन्य महाप्रभु की इस शरणागति को प्राप्त कर पाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक भक्त के जीवन में कि वह वैष्णवों को सही प्रकार से सम्मान कर सके। इसमें दो मैं प्रैक्टिकल सोच रहा था कि क्या हमने जैसे सुना भी है कि दो तरीके होते हैं, एक डीलिंग्स और एक फीलिंग्स, है ना। हमारी हो सकता है कि फीलिंग्स अच्छी ना हो किसी वैष्णवों के प्रति, लेकिन फिर भी हमारे को उनको डील अच्छा करना चाहिए। वैसे तो डीलिंग्स और फीलिंग्स दोनों ही अच्छी रहनी चाहिए। एटलीस्ट एक्सटर्नली हमारे को कभी कभार मान लीजिए किसी हमारे भक्त से द्वेष तो नहीं होना चाहिए, किसी मन मुटाव है या फिर किसी से हमारा कुछ नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमारे को उनसे हमेशा डील सही प्रकार से करना चाहिए। और धीरे धीरे उस हर भक्त के लिए, जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो भगवान का नाम ले रहा है। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेता दीक्षाश्चि चेत प्रणत भी भजन्तम ईशम श्रुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादि शून्यम हृदयमिप्सित संग लब्धया। तो वो कह रहे हैं सभी व्यक्तियों का सम्मान करो जो भगवान का नाम ले रहा है, सभी व्यक्तियों का सम्मान करो, है ना, और उनको प्रणाम करो जो भगवान के सेवाओं में लगे हुए हैं, और उनका संग करो जो भगवान निंदा शून्य से रहित है। सेवा हमारे को हर सबकी सेवा करनी चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसकी हम सेवा करें या किसकी नहीं करें। और डील करने का तरीका अलग अलग हो सकता है एक भक्त का, उनसे कैसे उनसे व्यवहार करना है, उनसे कैसे एक्सचेंजेस करने हैं, वो अलग हो सकते हैं जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया। लेकिन जब ये शब्द आता है वैष्णव सेवा, तो वैष्णव मतलब जो भी भगवान का नाम ले रहा है, जो भी किसी प्रकार से भी हो सकता है उनके घनिष्ठ रूप में उनकी सेवा ना कर पाए, अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो सेवा का मूल सिद्धांत है, सेवा का भाव है, वो सबके लिए कॉमन है। तो ये जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में विनम्रता आती है, सहिष्णुता आती है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करेगा उनके आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से, भक्तों की कृपा से ही व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही कह रहे हैं कि वरना कृष्ण का स्मरण करना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि जैसे ही हम अरे कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे लिए मुश्किल है तो कृष्ण का स्मरण तुरंत भूल जाते हैं, है ना। जैसे एक बारी इस गृह सुखमनी कृष्ण जी बता रहे थे कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जैसे कंडीशनड अप्लाई, एक लेबोरेटरी होती है ना, उसी में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे लिए कुछ ज़्यादा सुख आता है या ज़्यादा दुख आता है, भगवान भी बोलते हैं गीता में दुखेश अनुदिन बिना सुखेश विगत स्प्रिया, दुख में बहुत दुखी मत हो, सुख में बहुत सुखी मत हो, एक स्थिर मन रखो। तो हमारे लिए भी जो हमारी भक्ति होती है बहुत कंडीशनड होती है, लेकिन जैसे ही हमारे लिए कुछ मुश्किल अवस्था आ जाती है तो हमारे लिए भक्ति करना या फिर बहुत ही हर्षोल्लास हो गया भौतिक स्तर पर, तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम हर प्रकार से इस भक्ति को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे यही लिखेंगे श्लोकों के बाद, क्योंकि मैं सभी जो वृंदावन वासी हैं, मदन मोहन है, रूप है, सनातन है, रघुनाथ भट्ट है, रघुनाथ दास है, इन सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ जिससे मैं इस कार्य को संपन्न कर सकूँ, अन्यथा वो ये मेरे लिए कार्य संपन्न नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी जो उम्र है वो 90 साल की उम्र में कार्य सोच रहे हैं, कह रहे हैं मैं पागल हो गया हूँ, मैं मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा है, मेरा मन कार्य नहीं, मेरा कुछ एक बॉडीली लेवल पे वो बिल्कुल असंभव है ये कार्य करना, मन शरीर सब उनका अस्वस्थ है। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि मेरे को इन भक्तों का ऑर्डर है, इन भक्तों का आशीर्वाद है, तो मैं कार्य करने का सामर्थ्य करता हूँ, प्रयास करता हूँ, है ना। तो ये कि जो मटेरियल कंडीशंस हैं, मटेरियल जो परिस्थिति है, वो भी हमारे को सहायक बन सकती है, वो भी हमारे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी अगर किसी भक्तों का हमारे को ये आशीर्वाद होता है, तभी वो कार्य संपन्न कर सकता है और भक्ति के जीवन में एक भक्त सही प्रकार से विनम्रता से भगवान की सेवा का अनुकूल कर सकता है। तो मैं यही बताना चाहता था। अभी 10 मिनट हैं, आपको किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ टिप्पणी हो तो आप पूछ सकते हैं कि भक्तों को। मैं ज़्यादा
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा आपका लेक्चर। प्रभु जी, मुझे ये डीलिंग और फीलिंग का थोड़ा सा इतना समझ नहीं अभी आया, आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में?
मैं बता रहा था कि जब वैष्णवों से हम आदान प्रदान करते हैं तो दो चीजें होती हैं कि हमारे फीलिंग्स और हमारी डीलिंग्स। फीलिंग्स होती हैं कि जो हम उनके बारे में किस प्रकार सोचते हैं, और डीलिंग्स हैं कि हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। तो मैं कहता हूँ दोनों ही हमारी अच्छी होनी चाहिए, फीलिंग्स भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो यही हम बता रहे थे कि फीलिंग्स हमारी चाहे सबसे अगर हो सकता है ना भी हमारी अच्छी हो कुछ कुछ भक्तों के लिए, जैसे कुछ भक्तों से हमारी हमारी इंटीमेट डीलिंग्स फीलिंग्स होंगी और कुछ भक्तों से नहीं होंगी, लेकिन फिर भी डील हमारे को सबके साथ अच्छे से करना चाहिए, ये हम बता रहे थे।
अड़चन एक, तो इसको किस तरह वो सोचते हैं, मतलब कि जरा खुल के बताइए कैसे, मतलब सोचते हैं कि वो अड़चन है, किस लिए कैसे, मतलब क्या सोचते हैं, फिर क्या सोचते हैं?
आप देखेंगे ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम किसी को अपने और भगवान के बीच में नहीं आना चाहते, मेरा और भगवान का संबंध डायरेक्ट है ना, ज़्यादातर यही लोग सोचते हैं। और सोचते हैं कि गुरु कोई हमारे को ये आप संसार में भी देखेंगे कि जो कि ऐसा प्रचलित है ज़्यादा कुछ लोगों में, कि क्योंकि वो किसी की बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, किसी के ऑर्डर को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और मायावाद सिद्धांत भी इस प्रकार से ही है, वो गुरु को स्वीकार करते हैं गुरु बनने के लिए, अल्टीमेटली उस गुरु को ही त्याग देते हैं, फिर कहते हैं नमो नारायण। तो क्योंकि वो किसी को किसी की सेवा नहीं करना चाहते हैं, किसी के आदेशानुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा ही होता है कि वो गुरु को अड़चन ही समझते हैं।
तो प्रभु जी, फिर वो गुरु बनाते क्यों हैं, फिर बनाते क्यों हैं, गुरु कैसे क्यों स्वीकार करते हैं फिर गुरु, जब उनके मन में ये भाव है तो गुरु क्यों स्वीकार करते हैं नाम के लिए?
वह गुरु इसीलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि जैसे मैं बता रहा था मायावादी लोग होते हैं, गुरु को इसलिए स्वीकार करते हैं कि अल्टीमेटली हम भी गुरु बन जाए, हमारा भी भगवान से भगवान ही बन जाए अल्टीमेटली, और फिर जो गुरु है वो त्याग देते हैं। और जो सही वैष्णव सिद्धांत वो ये है कि हम गुरु को स्वीकार करते हैं अब उनकी आज्ञाओं को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वो हमारे वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और हम एक दासत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रैक्टिकली हम किसी के दास को दासत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जिससे हम भगवान की सेवा को सही प्रकार से कर सकें।
मेरे हिसाब से ये भक्ति का मार्ग, मतलब ये करना चाहिए भक्ति में, ये करने से मैं एडवांसमेंट होगा, मगर गुरु बोल रहा होता कुछ और सेवा करने के लिए, तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं क्या इसको, मतलब अड़चन की तरह?
अड़चन की तरह, सही बात है। प्रभु जी ने अच्छा बताया कि भगवान मेरा मन में, मेरे को कल सपना आया था कि मैं भगवान की सेवा करूं, फिर गुरु जी ने बताया ऐसे सेवा करो तो लगेगा ये अड़चन ही है, ऐसे ही हो सकता।
उनकी सेवा ऐसे करने भगवान के नाम लेते हैं, तो ऐसे बाहर के मेट्रो स्टेशन से तो कोई भी एक बार तो नाम ले लेते ही हैं, एंड फिर हम मंदिर में किस तरह से नाम लेंगे, तो हम उनको ऐसे सेवा करना चाहिए भगवान के नाम जो लेता है उसकी सेवा करना चाहिए, ऐसे होता है ध्यान।
जो भी नाम ले रहा है उनको हम सम्मान करें, उनको हम मन से आदर दें कि वह भगवान का नाम ले रहे हैं।
तो ऐसे बाहर के ऐसे भक्त वगैरह जैसे एक बार भी भगवान का नाम लेते ही हैं एंड मंदिर में भी बहुत सारा नाम लेते हैं, तो ऐसे किस तरह से हम ऐसे सेवा करते सम्मान करते कि ज्यादातर हम ज्यादा सेवा ऐसे सम्मान करते तो दे थिंग्स सो स्टूपिड ज्यादा वो, अरे इतनी सेवा इतने हमको कर मैं उसको बेको बना रहा हूँ ऐसे कुछ
समझा नहीं
नहीं समझे
ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।